الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا میرے دینی بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حیات اور وفات کا سلسلہ جاری کرنے کا سبب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو زندگی دی اور کیوں اس کو اللہ رب العالمین نے موت دی. زندگی اور موت کا یہ نظام کیوں قائم کیا گیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں, مختلف حالات میں ڈالا ہے, جسمانی اعتبار سے, رنگ و نسل کے اعتبار سے, عقل اور فہم کے اعتبار سے ہر ایک کی صلاحیت دوسرے سے الگ ہے. پھر جس زمانے میں, جس علاقے میں, جس دور میں اللہ نے انسان کو ڈالا ہے وہ بھی دوسروں سے الگ ہے. ان مختلف صفات, حالات, صلاحیتوں کے ساتھ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس میں مقصود اس کا امتحان ہے, اس کی آزمائش ہے کہ وہ اس امتحان سے گزرے اور آخرت میں اپنے لیے اچھا یا برا انجام بنائے. پچھلے کچھ دروس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سلسلہ ہم نے اس سلسلے میں جاری کیا تھا کہ وہ کیا فتنے ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور ان کے ذریعے اس کو آزمایا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک مسلمان کو خبردار رہنا ضروری ہے وہ کیا چیزیں ہیں. اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی تھیں, مثال کے طور پر اگر یاد نہ ہو تو میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا فتنہ اور آزمائش اور امتحان دنیا کا زیب و زینت والا ہونا, دنیا کی خوبصورتی جو آدمی کو آخرت سے, اللہ سے غافل کرتی ہے. اس میں امتحان یہ ہے کہ آدمی اس میں کھو جاتا ہے یا اللہ کو یاد رکھتا ہے, دنیا کو آگے رکھتا ہے یا آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے. پہلا امتحان, ایک امتحان یہ ہے. دو, مال, روپے, پیسے, زیورات اور یہ ساری چیزیں انسان کی ملکیت. مال بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور مال کی وجہ سے ایک انسان اپنے بعض اوقات دین کو بیچ دیتا ہے, بعض اوقات اصولوں کو بیچ دیتا ہے. مال کی وجہ سے آدمی قتل اور خون تک پہنچ جاتا ہے. تو مال بھی دوسرا ایک بہت بڑا فتنہ ہے, جیسا کہ خود حدیث میں بھی آیا ہے. تیسرا فتنہ اور آزمائش, عہدہ, عزت, شہرت, مقام. یہ ساری چیزیں کہ دنیا میں نام ہونا, دنیا میں مقام ملنا, عہدہ ملنا, یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے. اس کی طلب میں کافی اختلافات, جھگڑے, رسہ کشی اور بہت کچھ ہوتا ہے. اس کی طلب میں آدمی بہت کچھ غلط کام بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے, تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. اسی طرح سے چوتھی چیز جو آزمائش اور فتنے کی تھی, عورت کا فتنہ, کہ ایک عورت اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے, اپنے حسن کے اعتبار سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے, آزمائش ہے. اور کبھی وہ ماں کے رشتے میں ہے, کبھی بیٹی کے رشتے میں ہے, کبھی بہن اور بیوی کے رشتے میں ہے. ان رشتوں کے اعتبار سے مرد کی ذمہ داری पूरा वो करता है या नहीं करता है, ये भी उसका इम्तिहान है। औरत कमजोर होती है, मर्द ताकतवर होता है, इस एतबार से उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर वो उस पर जुल्म तो नहीं करता है, ये उसका इम्तिहान है, ये उसके लिए फितना है, ये उसकी आजमाइश है। इसी तरह से पांचवी चीज हमने देखी कि अहल अयाल भी इंसान के लिए आजमाइश और फितना है, खास तौर से औलाद। औलाद के लिए आदमी रात दिन एक करता है, कमाता है, बाज़ औक़ात हराम को भी अपने लिए हलाल कर लेता है, उसके एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए, कभी बेटियों के लिए, कभी बेटों के लिए। औलाद की वजह से एक आदमी अपने दीन को भी बर्बाद करता है, अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। तो औलाद की मोहब्बत एक बहुत बड़ा फितना और आजमाइश इंसान के लिए होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी गलतियां भी आदमी करता है। कभी बीमारी की वजह से शिर्क तक आदमी चला जाता है, औलाद बीमार है, इलाज डॉक्टर से नहीं हो रहा है, फिर शिर्क तक भी आदमी पहुंच सकता है। तो औलाद भी एक बहुत बड़ा इम्तहान, आजमाइश और फितना है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि छठी चीज इसमें क्या है जो हमारा इम्तहान या हमारे गुमराही का सबब, जिसमें हमको बहुत बच बचा के निकलना है, जो हमारे लिए फितना और आजमाइश हो, क्या है। छठी चीज अहले बातिल का दुनिया में वजूद है। दुनिया में सब सही हो ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जैसे हक को पनपने का मौका दिया है, वैसे ही दुनिया में बातिल को भी अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका अल्लाह ने दिया है। दुनिया में अहले हक भी आपको मिलेंगे और अहले बातिल भी आपको मिलेंगे। दुनिया में अगर उजाला है तो दुनिया में अंधेरा भी है। दुनिया में अगर खैर है तो दुनिया में अल्लाह ताला ने शर को भी पनपने का मौका दिया है। अगर नबी दुनिया में आए तो शैतान भी दुनिया में है। तो दुनिया में खैर के साथ साथ शर का भी वजूद है और शर वालों का भी वजूद है। हक के साथ साथ दुनिया में वक्ती तौर पर बातिल को भी बढ़ने, फलने, फूलने का मौका मिलता है और बातिल वाले भी यहां पर अक्सर औकात इख्तदार वाले होते हैं, ताकत वाले होते हैं। लोगों की जहालत और लोगों की ख्वाहिशात उनको अहले बातिल के पीछे लगा देती है। जहालत की वजह से अहले बातिल के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं मालूम सही क्या है, गलत क्या है, बातों में आ गए। ख्वाहिशात हैं, वादे बहुत सारे उनको दिखाई देते हैं कि शॉर्टकट है जन्नत में जाने का, लिहाजा अहले बातिल के पीछे एक बड़ी भीड़ आपको चलती हुई दिखाई देती है। हक का रास्ता हमेशा बहुत कम लोग उसमें मिलते हैं, लेकिन बातिल के रास्ते पर लोग बड़ी तेजी से रवां दवां होते हैं। तो दुनिया में अहले बातिल का वजूद, गलत का वजूद, शर का वजूद एक आम इंसान के लिए और खुसूसन अहले हक के लिए बहुत बड़ा फितना होता है। कभी लोगों का इनकार दाई को, दीन की दावत देने वाले को ढीला कमजोर कर देता है, वो अपनी बात में कमजोर हो जाता है। कभी मुखालफत तानों से बढ़कर मारपीट तक आ जाती है, आदमी अपनी जान, अपने घर, बीवी, बच्चों के डर की वजह से बातिल पर चलने लग जाता है कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझको नुकसान पहुंचाएंगे, पूरे गांव में मैं अकेला हूं। तो जैसा देश वैसा भेस, आदमी को मजबूरन उनकी बातों में आना पड़ता है। कभी अहले बातिल के पास बातचीत करने का सलीका होता है, वो अपनी गुफ्तगू की कुव्वत की वजह से एक गलत बात को सही और सही को गलत साबित कर पाते हैं। आम इंसान उनकी बातों में आ सकता है, आ जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फितना और धोखा और आदमी के लिए आजमाइश होती है। तो इस एतबार से कलाम का धोखा या कुव्वत का गलबा, ताकत, ये चीजें अगर अहले बातिल के हाथ में आ जाएं, गुफ्तगू की सलाहियत जिससे आदमी को कंफ्यूज किया जा सकता है, या सियासी ताकत जिसके जरिए से लोगों को डराया धमकाया जा सकता है, या इसी तरह से माल की ताकत जिससे लोगों को लुभाकर हक के रास्ते से हटाया जा सकता है, तो अहले बातिल के पास अगर ये चीजें जमा हो जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा फितना हो जाता है और गुमराही का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। एक आम आदमी के लिए भटकना बहुत मुमकिन हो जाता है। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा फितना इंसान के लिए दुनिया में है, जिसके बारे में आदमी को बहुत खबरदार रहना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल हज आयत नंबर 8 और 9 में कि कैसे लोग दूसरों को गुमराह करते हैं बहस और मुबाहसे के जरिए से। अल्लाह ने फरमाया वमिन الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, कठपुतली करते हैं, बहस मुबाहसे और मुनाजरे करते हैं, अल्लाह के बारे में लड़ते हैं, अल्लाह की सिफात के बारे में, अल्लाह के वजूद के बारे में, अल्लाह ताला की शरीयत के बारे में लोगों से लड़ते हैं, बगैर इल्म, बगैर इल्म के, वला हुदन हिदायत के बगैर, वला किताब मुनीर यानी ना उनके पास अक्ल दानिश है, समझदारी भी नहीं, इल्म भी नहीं उनके पास, उनके पास हिदायत नहीं, तकवा अखलाक नहीं उनके पास, और उनके पास कोई किताब भी नहीं जो पहले से चली आई हो, नबूवी इल्म उनके पास नहीं, मनकूल इल्म उनके पास नहीं, तो ना उनके पास खुद अपनी गौर फिक्र की सलाहियत है, ना उनके पास रब्बानी इल्म है, और ना उनके पास अखलाक है। वो इन तमाम बुराइयों के साथ लड़ते हैं, जहालत, बदअखलाकी और बेदीनी के साथ में वो लोगों के साथ हुज्जतबाजियां करते हैं। ثانيه عطفه ليضل عن سبيل الله, ये आदमी ऐसा है कि घमंड से अपनी गर्दन मोड़े रहता है और लोगों को क्यों ऐसा करता है, क्यों हुज्जत करता है, क्यों घमंड में आता है, ليضل عن سبيل الله, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दे। हर समाज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जाहिल किस्म के लोग जो अपनी बात पर अड़े रहना पसंद करते हैं, उनको दलील से, हक से, वजाहत से कोई मतलब नहीं होता है, जो उन्होंने समझा है अपनी जहालत में वही सही है, उनके पास कोई रब्बानी इल्म नहीं, उनके पास कोई बात करने का सलीका नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई तकवा नहीं, अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत पर वो नहीं होते हैं। लेकिन उनका मकसूद क्या होता है, लोगों को अल्लाह के रास्ते से दूर करें, झगड़ा करते हैं, जदल करते हैं, अड़ियल बातें करते हैं, कठहुज्जती करते हैं, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह की राह से लोगों को दूर करते हैं। सानी अतफी का मतलब उलमा ने कहा, इसका मतलब यह है कि घमंड से अपनी गर्दन मोड़े रहता है, बिल्कुल इस तरह से मुंह मोड़ के चले जाना या सर उठाए रहना, ये सारी चीजें उसमें शामिल है कि एक आदमी घमंड और जहालत दोनों उसमें जमा हो जाएं, तो आप बताइए इससे ज्यादा बुराई क्या हो सकती है, जहालत और घमंड, और फिर इसके साथ आदमी हुज्जत पर आ जाए और भी नुकसान हो जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह की राह से लोगों को भटका दे। तो बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, समाज का ठेकेदार अगर कोई है और वो अपनी बात पे अड़ के बोल दे कि यही सही है, तो मानना पड़ता है कि भाई यही सही है, वरना लोगों का मसला हो जाएगा। या कोई मस्जिद का इमाम है या किसी इलाके का सरदार है, अब कुरान और सुन्नत का इल्म तो उसके पास नहीं है, लेकिन चूंकि लोग उसकी मानते हैं, उसकी समाज में चलती है, जिस बात को वो सही कह दे पब्लिक उसी को सही मान लेती है, तो ऐसे लोग कई लोगों की गुमराही का जरिया बनते हैं, कई लोगों की गुमराही का जरिया बनते हैं। तो इस आयत में बात मालूम हुई कि ये लोग समाज में फितना होते हैं, ऐसे लोग जो हिदायत पर ना हो और लोगों को गुमराह करें, लोगों को अल्लाह के रास्ते से दूर करें। इस सिलसिले में सलफ के अकवाल में से आप देखें, अबू किलाबा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم, तुम बिदातियों के साथ صحبت اختیار نہ کرو. بدعتیوں کے ساتھ جو سنت چھوڑ کے بدعتوں پہ رہتے ہیں, بدعتوں کی دعوت دیتے ہیں, بدعتوں کی اشاعت کرتے ہیں, ان کی صحبت اختیار مت کرو. اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ مت رکھو. ولا تجادلوہم, اور ان سے بحث مباحثہ بھی مت کرو. ان سے بحث مباحثہ بھی مت کرو. کیوں؟ فإني لا آمنوا, فإني لا آمنوا أن يغمسوكم في ضلالتهم, اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تم کو اپنی گمراہی میں ڈبو نہ دیں. او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون, یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے معلوم شدہ علم کے بارے میں تمہیں شک میں مبتلا کر دیں. دو میں سے ایک ہوتا ہے, ایک آدمی ایک گمراہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو, بات چیت اس کی ہو, صحبت اختیار کرے اس کے ساتھ میں, دوستی کرے اس کے ساتھ میں, اب کیا ہوگا؟ دو میں سے ایک بات ہوتی ہے. اگر یہ کمزور ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک, جو غلط بات اس کے نزدیک ہے وہ اس کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرے گا, اور یہ آدمی اس کی غلط کو صحیح مان کے اس میں ڈوب جائے گا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے لڑتے لڑتے لڑتے, ٹھیک ہے نہیں مان رہا اس کی بات, لیکن وہ اس کے علم میں ایسا شک پیدا کر دے کہ اس کا اپنا اطمینان ختم ہو جائے. یا تو یہ اس کی بات وہ مان لے, ٹھیک ہے وہ نہیں مانا تو وہ اتنی بحث اس کے مانے ہوئے علم میں کرے گا, یہ کنفیوز ہو جائے گا کہ میں جو مان رہا ہوں وہ حق ہے کہ نہیں. دیکھیں کتنی حکمت کی بات بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِّي لَا آمَنُ, مجھ کو امن نہیں ہے, مجھ کو ڈر ہے اس بات کا کہ اَن يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ, کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی گمراہی میں تم کو مبتلا کر دیں جس میں وہ خود مبتلا ہیں, تم کو بھی مبتلا کر دیں. یا اَوْ يَلْبِسُ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ, جس چیز کو تم سمجھ چکے ہو, جو چیز تمہارے علم میں ہے, جس کو تم مانتے ہو, کہیں وہ اس کے بارے میں تم کو شک میں مبتلا نہ کر دیں. اور ایسا ہوتا ہے, آدمی جاتا ہے دعوت دینے, دعوت کھا کے آتا ہے. اگر علم پختہ ہے بہت اچھی بات ہے, اگر علم پختہ نہیں ہے آدمی کو بہت دور رہنا چاہیے اہل بدعت سے. ہاں ایک آدمی واقعی اہل بدعت کا رد کر سکتا ہے, اس کے پاس اتنا علم ہے, اس کو یہ میدان اس کے لیے لازم ہے, وہ کرے, وہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دعوت کا جذبہ اس میں ہوتا ہے, لیکن دعوت کے جذبے کی بنیاد پر وہ بحث و مباحثے میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور نتیجے میں اس کا اپنا دین کمزور ہو جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. امام الدارمی نے اس کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے. تو یہ ایک فتنہ ہوتا ہے, یہ علمی اعتبار سے ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں سے بحث مباحثے میں مبتلا ہو, ان کی کتابیں پڑھے, ان کے انٹرنیٹ پہ جا کے ان کی ویب سائٹ میں دیکھیں, دیکھیں گے تو کیا بولتے ہیں یہ, کیوں میں ان کے اندر غلطیاں نکالوں گا. تو ایسا ہے کہ اس کو پکڑنے کے چکر میں گیا, اسی کا پاؤں پھسل گیا, وہ تو ہاتھ میں آیا نہیں, اسی کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا, چور کو پکڑنے بھاگا اور بھاگنے میں کیا ہوا, پاؤں پھسل گیا, چور تو نکل گیا, چوٹ آ گئی, تو نقصان کس کو ہوا؟ اس کو ہوا. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے, اہل باطل کی تردید میں ایک انسان ادھورے علم کے ساتھ جب ابتدا کرتا ہے تو نقصان خود اس کا اپنا ہوتا ہے, الا یہ کہ اللہ رب العالمین بچائے. تو ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز, اہل باطل جیسے میں نے بتایا کہ یہ علمی اعتبار سے گمراہ کرنا, یہ ایک فتنہ ہے. کبھی اہل باطل کے پاس طاقت ہوتی ہے, اس طاقت کی بنیاد پر وہ اہل حق کو مار پیٹ کے حق سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر کمزور لوگ ہیں تو ان کے ڈر کی وجہ سے, نقصان کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے حق چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, اس میں جمنا پڑتا ہے, اس میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. اگر آدمی کے اندر صبر نہ ہو, اللہ پر یقین نہ ہو, توکل نہ ہو, آخرت سامنے نہ ہو, تو ایک آدمی پاؤں اس کا پھسل سکتا ہے, وہ گمراہ ہو سکتا ہے. वो हक को छोड़ सकता है, डर के वो हक को छोड़ सकता है। कहां इतने लोगों से दुश्मनी बोलना है, पूरे रिश्तेदार बिदाती, और अगर मैं वो सारी खुराफात नहीं करूंगा ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, उनके पास पावर है, मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हुक्का वैसे भी सही नहीं है कि उठना बैठना चौपाल में मुश्किल हो जाएगा। मेरी बेटी फलाने घर में दी हुई है, तिजारत मेरी जुड़ी हुई है, इनके पास ताकत है, अब ये क्या करेंगे, मुझको सताएंगे। वो जो डर है सताने का और तकलीफ का, उसकी वजह से आदमी बोलता जाने दो ना, अल्लाह माफ करने वाला है, चल रहे सब चलो ना, कहां बहुत आलिम उलमा है कि मैं जाने दो, कौन मालूम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इतने सब क्या पागल है क्या। फिर आदमी का दिल उसको उनकी बात मनवाने की कोशिश करता है, उसका डर उसका खौफ उसको गलत चीज भी बोलता जाने दो, चलता है थोड़ा बहुत मार्जिन रख के चलो, वो भी तो उलमा है। फिर आदमी को ऐसा समझ में आने लगता है और आदमी भटक जाता है। तो ये भी एक चीज है। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर बिअम्मार व अहलिहि व हुम युअज़्ज़बून। देखिए सहाबा का क्या हाल था। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार और उनके घर वाले यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, मक्का के दौर की बात है, उनके पास से गुजरे। वह हुम युअज़्ज़बून, उनको देखा तो उनको अजाब दिया जा रहा था, क्यों, मुसलमान होने की वजह से इनके पास समाज के अंदर सियासी ताकत नहीं थी, तो जो लोग समाज के बड़े वहां पर हैं वो शिर्क पर कायम थे, और जब देखते कि कुछ कमजोर लोग भी मुसलमान हुए हैं तो उनको घसीट कर उनको तकलीफ देते, रेगिस्तान में कभी गर्म रेत पर सुलाते, कभी आग पर लिटाते, कभी घसीटते रस्सी से बांधकर, कभी पत्थर मारते, कभी सजा देते, कभी दाग देते, हर तरह की तकलीफ उनको दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, देखा हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और उनके घर वालों को वहां पर अजाब दिया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, इस्लाम कबूल करने की वजह से सताया जा रहा है। आपने क्या कहा, فقال ابشروا آل عمار و آل ياسر, ए आल अम्मार ए आल यासिर खुशखबरी सुन लो, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, इसलिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत का वादा है, थोड़ा सा सबर कर लो, लेकिन इस सबर पर तुम्हारे लिए क्या है, अल्लाह के यहां जन्नत का वादा है, यहां मशक्कत वहां पर जन्नत। فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, इमाम हाकिम और बैहकी ने इसको रिवायत किया है, और एक रिवायत में कि सबरन या आल यासिर فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, ए आल यासिर सब्र करो सब्र करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां जन्नत का वादा है। इसको इमाम अल हाकिम ने रिवायत किया है और शेख अल अल्बानी ने इसको हसन सही कहा है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि दीन की वजह से अहले हक को बाज़ औक़ात अहले बातिल सताते हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन अहले हक को चाहिए कि वो उनकी तकलीफ की वजह से हक का दामन न छोड़ें, वो हक मजबूती से पकड़े रखें, चाहे तकलीफ हो। अगर हक पर चलने में कोई तकलीफ नहीं होती तो कौन हक पे नहीं आता, कौन हक पे नहीं आता, सभी हक पे आ जाते हैं, लेकिन हक पर चलने की वजह से समाज में इंसान को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फिर जो आदमी उस तकलीफ के बावजूद हक पर जमता है अल्लाह के यहां उसको अजर मिलता है, लेकिन जो आदमी इन तकलीफों को देखकर हक को छोड़ देता है अल्लाह भी उसको छोड़ देता है, अल्लाह उसका साथ छोड़ देता है। जो आदमी चाहता है कि अल्लाह उसका साथ न छोड़े, उसको चाहिए कि वह हक का साथ न छोड़े, जो हक का साथ देगा अल्लाह उसका साथ देगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वा युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह की नुसरत के लिए हक पर जमना और उसका साथ देना जरूरी है। तो ये छठी बात हमने देखी कि समाज में बातिल का पनपना भी अहले हक के लिए फितना बन जाता है और कमजोर किस्म के लोग उनकी वजह से, शुकु को शुभात की वजह से या ताकत और तकलीफ की वजह से हक को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 7, कभी तकलीफ अहले बातिल की तरफ से आती है लेकिन कभी तकलीफ किसी की तरफ से नहीं, वो अल्लाह की तरफ से आती है, उसमें किसी इंसान का दखल नहीं होता है। और ये तकलीफें भी इंसान के लिए हक से हटने का सबब बनती है। मसलन दुकान अच्छी चल रही थी लेकिन अचानक क्राइसिस शुरू हुआ और क्या हुआ, बिजनेस डाउन होने लगा। अब इसकी रातों की नींद खराब हो जाती है, फिर अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं, कभी बाबा याद आते हैं, लोग बताते हैं कि एक काम करो, ये हामीम यासीन साद जो भी है इस तरह से ये अपनी दुकान में लगा, देखो कैसे चलती दुकान बगैर पहियों के, चलेगी दुकान। अभी सोचता है कि सब तो ट्राई किया, अब ये एक चीज ट्राई करने में क्या जाता है, और कुरान ही तो है। आदमी दुकान में जाके लगा देता है, कभी बात और आगे जाती है, नारियल भी लटका देता है, कभी और प्रोडक्ट छोटा हो जाता है, लेमू मिर्ची लटका देता है, कभी काली गुड़िया, कभी चार कोनों में चार कीलें ठोक देता है, कभी कुछ खोद के उसमें गाड़ देता है। फाइनेंशियल तकलीफ, कभी मिलावट शुरू कर देता है, कभी खियानत शुरू कर देता है, कभी धोखा शुरू कर देता है, कभी झूठ शुरू कर देता है, फिर अब उसकी क्वालिटी बिजनेस की भी खराब हो जाती है, दीन की भी खराब हो जाती है। तो दुनिया की तकलीफें आदमी को डगमगा देती हैं, आदमी के कदम हक के रास्ते से डगमगाने लगते हैं। घर में बीमार है, बीवी है, बच्चा है, कोई बीमार है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर ये डॉक्टर, आदमी सब ट्राई करता है, फिर उसको कोई बताता है नहीं ये वो बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारी है, फिर आदमी क्या करता है, किसी बाबा के पास जाता है और शिरकियात करता है। सही तरीके से भी इलाज होता है, कुरान और सुन्नत से भी इलाज हो सकता है, अगर कोई ऐसी चीज है वाकई जिन का असर है या कुछ है तो उससे भी इलाज होता है, लेकिन आदमी का अगर उसकी तौहीद पुख्ता ना हो तो आदमी दरगाहों पे जाके सज्दे करना शुरू करता है, बल्कि दरगाह छोड़ के कभी किसी पुल के नीचे जाके बगैर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर के जानवर ज़बह करने के लिए बाबा बोल दे तो वो भी करता है। बीवी अच्छी हो जाए, बच्चा अच्छा हो जाए, तकलीफें दुनिया की परेशान कर देती इंसान को। तो दुनिया के मसाइल आदमी के दीन को बिगाड़ देते हैं, आदमी दीन को खैरबाद कह देता है। जॉब कोशिश कर रहा है बहुत, एक इंटरव्यू दिया, दो दिया, तीन दिया, नहीं क्यों नहीं, दीनदार है, दाढ़ी, दाढ़ी से डिग्री पर असर पड़ रहा है, फिर कोई सलाह देता है बाद में रख लेना जॉब लगने तक काटो, तो ये आदमी क्या कर देता है, दाढ़ी काट देता है। कभी झूठे सर्टिफिकेट ऐड कर देता है, कभी क्या नहीं करता है। तो एक आदमी यानी एक चीज पाने के लिए, तकलीफ को हटाने के लिए दीन ही को जिंदगी से हटा देता है। अब बताइए अल्लाह की मदद कैसे आएगी, दुनिया में तकलीफ आती इम्तिहान के लिए है, अब तकलीफ के वक्त में अल्लाह को भी नाराज कर ले तो मदद का दरवाजा खुद बंद कर दिया है इसने। एक आदमी को तकलीफ आए तो उसको तो अल्लाह से मदद का दरवाजा खोलना चाहिए, अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए, इसलिए कि मसाइल का भेजने वाला और हटाने वाला वही है। वह इम्सकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ तुझको आ दबोचे तो उसके सिवा कोई और नहीं है जो उसको हटाने वाला है, अल्लाह के सिवा तकलीफ कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन जब तकलीफें आती हैं तो इंसान इन तकलीफों में ऐसी हरकतें करना शुरू करता है کہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کی مدد کے دروازے بند کرتا ہے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے جس سے اللہ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ بالکل کنارے رہ کر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بندے کیسے اقدام باؤنڈری پر ہے۔ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اچھے حالات آتے ہیں تو خوش خوش اطمینان والی زندگی ہوتی ہے، اطمینان سے جیتے ہیں، دین پر مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر فتنہ آ جاتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، تقویٰ چھوڑ دیتے ہیں، حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، بلکہ یہ کھلا نقصان ہے، کھلا گھاٹا، کھلی ناکامی ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دین میں پوری طرح اترتے نہیں ہیں، کنارے رہ کر دین پر چلتے ہیں۔ اب کنارے رہنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، آپ بتائیے، آپ پلنگ پہ کنارے اگر سوئیں گے کیا ہونے والا ہے، ذرا سا دھکا لگا نیچے، اور اگر ٹیرس پہ اگر بالکل کنارے ہوں، چھت پر اگر کنارے ہوں، ہوا کا جھونکا آیا، بیلنس خراب ہوا، کہاں جائے گا، سیدھا نیچے۔ تو ایک آدمی جب کنارے پر ہوتا ہے تو اس کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کی زندگی میں دین سمایا ہوا ہو، وہ دین میں سانس لیتا ہو، اس کی سوچ دینی ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دم کنارے کنارے رہ کے دین پہ چلیں گے، جیسے ہی حالات آ جائیں سب سے پہلا سلام کس کو، دین کو، ہوتا ہے ایسا، سب سے پہلے سلام دین کو کرتا آدمی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہوا ایسا، ایک دم کنارے تھا یہ، جیسے ہی حالات آئے دین سے کیا ہو گیا، باہر ہو گیا، حق کے راستے سے دور ہو گیا۔ تو تکلیفیں ایک انسان کو بے دین بناتی ہیں، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، تکلیف کے حالات میں اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، اور جو شریعت نے حل اس کا بتایا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تو تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزما کر رہیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کن کن چیزوں سے آزمائیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، ہم آزمائیں گے تم کو، خوف کے حالات تم پر ڈالیں گے، بھوک کے حالات تم پر ڈالیں گے، تجارت بگڑے گی حالات ڈالیں گے، مال کم ہوگا، کھیتی بگڑے گی حالات ڈالیں گے تم پر، تمہارے گھروں میں بیماریاں اور موت آئے گی حالات ڈالیں گے تمہارے اوپر، جان و مال کے اعتبار سے، کھیتی اور اناج اور ساری چیزوں کے اعتبار سے ہم حالات ڈالیں گے۔ تو وبشر الصابرین، تو خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو حالات میں دین پر جمے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کون ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی ذہنی حالت کیا ہے، ان کی مینٹالٹی کیا ہے، صبر کرنے والا بولتے کس کو ہے، کوئی آدمی کہے مجھ کو صبر ہے، کہ نہیں چیک کرنا ہے، صبر اصلاً آدمی کے دل میں ہوتا ہے، پھر زندگی میں آتا ہے. صبر انسان کی سوچ میں ہوتا ہے، پھر عمل میں آتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبت. صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت ان کو پیش آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور پلٹ کے بھی تو ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یعنی صبر پیدا ہونے کا نسخہ اللہ نے بتایا، اور معلوم ہوا کہ صبر کرنے والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہے جس سے صبر زندگی میں آتا ہے. نقصان، تکلیف، پریشانی، غم، ان میں صبر پیدا کرنا ہے تو دو چیزیں کرنی پڑتی ہے بنیادی طور پر. نمبر ایک، انا للہ، ہم تو اللہ کے ہی ہیں، تو ہمارا جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے. تو اگر مال کھو گیا، ٹرین میں سے اترا بٹوا غائب، مسجد سے باہر نکلا جوتے غائب، سجدے سے سر اٹھایا موبائل غائب، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، تو ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے. جب ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، تو جس کے مالک ہم ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہماری ملکیت تو وقتی ہے، عارضی ہے، واقعی وہ اسی کا ہے، انا للہ. تو ایک آدمی سوچے بھائی اللہ کا تھا، اللہ نے لیا. آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، میں کبھی بھی لوں گا، پھر وہ آیا کل لینے کے لیے، آپ کیا بولیں گے؟ کیا ابھی تو کل تو دیا تھا، میں نہیں دیتا، میرا دل بھرا نہیں ابھی. آپ بولیں گے ایسا؟ نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہی کا ہے، لے جائیے. وہ آج مانگے، کل مانگے، پرسوں، اس کی مرضی، جب چاہے وہ لے لے. لہذا جس آدمی کا یقین یہ ہے کہ یہ اس کا ہے، میرا نہیں ہے، اس سے کھو جائے تو اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں. وہ انا الیہ راجعون، اور پلٹ کے ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. یہ آخرت کا عقیدہ ہے. یا رہنے تھوڑی آئے، یہ گیا، یہ نقصان ہوا، کوئی بات نہیں، ہم خود جانے والے ہیں، سب گیا تو کیا ہوتا. بھائی میری گاڑی گئی، میری دکان گئی، اور تو گیا تو صبر ہے کہ بھی فائدہ ہے کیا؟ تو بھی تو جانے والا ہے نا. کہ ایک آدمی کی کوئی چیز نہ جائے، سب چیزوں کی سیکیورٹی ہو، کچھ کھونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، گارنٹی ہے اس کی، تو رہنے والا ہے کہ گارنٹی ہے کیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کا سب کچھ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتے ہیں. وہ کہاں ہوتے ہیں؟ قبرستان میں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آج چیز گئی، کل ہم کو جانا ہے، یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آئے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا غم ہلکا ہو جاتا ہے، کھونے کی تکلیف ہلکی ہوتی ہے. دو چیزیں کہ قرآن ہی ہے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، اور پھر بتا صبر کرنے والے کون ہیں، ان کی مینٹالٹی اللہ نے بتائی ہے. صبر کرنے والوں کا ذہن کیسا ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی ملکیت کے سلسلے میں، اپنی جان اور اپنے مال، ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، یہ اللہ کا ہے، جب چاہے وہ لے بھائی. نمبر دو، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، یا رہنے تھوڑی آئے کہ خام خواہ روتے بیٹھے ہم لوگ، یہ میرا گیا، وہ میرا گیا، تو رہنے کے لیے تھوڑے آیا یہاں پہ، تجھ کو بھی جانا یہاں سے، یہ ٹیمپرری ہے، آج چیز گئی کوئی مسئلہ نہیں، آج بیمار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ تھوڑی رہنا یہاں پہ. یہاں کی کامیابی بھی وقتی ہے، یہاں کی ناکامی بھی وقتی ہے. تو یہ چیز ہم کو معلوم ہوئی کہ ساتویں چیز دنیا میں جو آزمائش اور فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی مصیبتیں ہیں. کبھی زلزلے میں کسی کا گھر ختم ہو جاتا ہے، کبھی طوفان اور آندھی میں لوگوں کے گھر اور خاندان بہہ جاتے ہیں، کبھی فائنینشل کرائسس آتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں. زندگی میں تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں، جس میں کسی کو دوش نہیں دے سکتا آدمی. زلزلہ آئے، کسی کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے؟ نہیں. کہ فلاں نے زلزلہ لایا، کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آیا. بہت ساری تکلیفوں میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے، मुसीबतों में आदमी दीनदारी को खो देता है। देखिए हमेशा हमको याद रखना चाहिए, सब कुछ खो गया चलेगा, दीन नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अल्लाह दीन ही के जरिए मिलता है, बेदीनी से अल्लाह मिलता है नहीं। तो अगर दीन को हमने खो दिया तो हम अल्लाह को और जन्नत को खो देंगे, इसलिए दीन को नहीं खोना चाहिए। ये वो टिकट है जो आखिरत में काम आने वाला है, इसके बगैर हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमको जमा नहीं किया जाएगा फिर जन्नत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबकी हिफाजत फरमाए। दीन संभालना जरूरी है, जैसे आदमी ट्रेन में टिकट संभाल के रखता है, खोना नहीं चाहिए, ये कागज तो है, कागज नहीं है, ये जेल से बचाने वाला कागज है, ये होना जरूरी है। तो एक कागज का टुकड़ा होता है लेकिन उसकी कीमत उसको मालूम होती है। दीन कितनी बड़ी चीज है, आखिरत में दीन काम आने वाला है, आखिरत में दीन काम आएगा। तो ये सातवीं चीज हमने देखी। आठवीं चीज क्या है? आठवीं चीज आपस के झगड़े और इख्तलाफात और नाराजगियां, चाहे वो खानदानी मामलात हों, घर के मामलात हों, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे वो मस्जिद के मामलात हों, चाहे वो दावत के मामलात हों, आपसी इख्तलाफात ये भी बहुत बड़ा इम्तहान होते हैं, जिसमें आदमी का अखलाक, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर खुल के सामने आ जाता है। एक आदमी बहुत शरीफ दिखाई देता है, सीधा काम को जाता वापस आता, जब झगड़ा उसका होता किसी से तो जब उसकी जबान खुलती है तब जाके मालूम होता है कि अच्छा फूल बरस रहे हैं अभी तो, इसको तो हम कितना शरीफ समझते थे, कैसा निकला है, ये गालियां भी देता है, ये कितनी बदखलाकी करता है। इख्तलाफात, आपसी झगड़े एक इंसान के छुपे हुए किरदार को बाहर निकालते हैं, फिर या तो वो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। एक अच्छा इंसान झगड़ों में, आपसी इख्तलाफात में अपने अच्छे होने का सबूत देता है, और एक बुरा आदमी आपस के इख्तलाफ और झगड़ों में अपने बुरा होने का सबूत देता है। कितने लोग बाखलाक दिखाई देते हैं लेकिन जब किसी से उनका मामला टकराता है तो फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि निगाहों से गिर जाते हैं। आप देखिए, चाहे मस्जिद का ट्रस्ट का मामला हो, चाहे पड़ोसियों का मामला हो, पड़ोसियों के झगड़े, साजिशें, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना, एक दूसरे के खिलाफ मारपीट तक आना, कितने कितने मामलात होते हैं। जमाती झगड़े, जमाती इख्तलाफात, फुलाने हाथ ऊपर बांधते हैं, फुलाने हाथ नीचे बांधते हैं, अब ये जमातों के झगड़े, मनहजी और मसलकी झगड़े। अब इसका नतीजा कहां तक आता है, हमारी मस्जिद में तुमने नमाज नहीं पढ़ना, फिर कभी कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट भी देता है जाके, ये लोग टेररिस्ट हैं, किसको मारे भाई, किसकी पिटाई की, किसका क्या किए, क्यों टेररिस्ट हैं ये लोग, हमारे मसलक के निचले टेररिस्ट हैं। अच्छा, आपसी इख्तलाफात, चाहे वो दीनी इल्मी इख्तलाफ हो, ये इख्तलाफ अगर आदमी इसको हजम ना कर पाए, अगर उसके अखलाक की थैली इतनी बड़ी ना हो कि उसमें ये इख्तलाफ समा सके, तो आदमी क्या करता है, फिर बद अखलाकी पर आता है और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगता है कि जिससे अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है और समाज में भी नुकसान का जरिया बनता है। आपसी इख्तलाफात बहुत बड़ा फितना होते हैं। कोई आपको पसंद नहीं है, आपने देखा उसकी तरक्की हो रही है, अब हसद दिल में पैदा हो गया, ऑफिस में वो भी काम कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, आपने देखा वो मेहनती है, बॉस उससे बहुत खुश है, बॉस ने आपको बुलाया, फाइल लेके आओ, साहब एक बात बताऊं आपको, मालूम नहीं, आपके भले के लिए बता रहा हूं, वो है ना आपके बारे में ऐसा बोल रहा था कल, ऐसा, बॉस उससे नाराज होकर उसका नुकसान। ये किसी से नाराजगी, दुश्मनी आदमी ऐसी निकालता है कि जिससे अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। दुश्मनी इंसान के किरदार को खराब करती है, या तो आपसी झगड़ों से एक आदमी का किरदार एकदम निखर के सामने आता है, या तो आपसी इख्तलाफ से एक आदमी का कैरेक्टर एकदम गिरा हुआ सबके सामने आ जाता है। लिहाजा एक आदमी को चाहिए कि वो दोस्त के साथ भी अच्छा रहे और दुश्मनी अगर करे भी, होती है दुनिया में दुश्मनी, दुश्मनी को अखलाकी दायरे में निभाए, वो अखलाक की रस्सी छोड़े नहीं, वो अखलाक की हदों को पार न करे। होता है आदमी का किसी से झगड़ा, नाराजगी, दुश्मनियां होती हैं, कभी रिश्तेदारों में, कभी पड़ोस में, कभी किसी और वजह से, कभी जॉब पे, लेकिन ये चीज आदमी को इतनी दूर ले जाती है कि आदमी सोच, मैंने वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इतना किरदार उसका बिगड़ जाता है, वो इतनी गलत हरकतें कर बैठता है। लिहाजा आदमी को इसका लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो अब बगीद आसा अयकून हबीब कयोम्मा, अपने दुश्मन से नफरत करने में थोड़ा हल्कापन इख्तियार कर, बहुत ज्यादा नहीं, इंटेंसिटी कम रख उसकी। दुश्मन से दुश्मनी भी एकदम दिल खोल के पूरी मत कर, दुश्मनी में भी तू थोड़ा हद में रह, दुश्मनी एकदम सख्त दुश्मनी मत कर किसी से। क्यों? आसा अन यकून हबीब कयौम मा, बहुत मुमकिन है किसी दिन वो तेरा महबूब दोस्त बन जाए। आपका एक से झगड़ा हुआ, आपने इतनी गालियां दी उसको, मारा पीटा, सब कुछ किया, लोगों को भी बुला के मार खिलाया और घर पे जाके भी मारा, उसके उसके बेटे को भी मारा। कुछ वक्त के बाद पुला का उसका किसी से रिश्ता हुआ, ये हुआ, होता मालूम पड़ा ये मेरे रिश्ते में आया, कहीं से जुड़ते जुड़ते आपके रिश्ते में, अब आप भी हैं रिश्ते में, आप भी बैठे हैं उसके घर में, वो भी बैठा है घर में, अब कितनी शर्मिंदगी होती है, मैंने क्या क्या किया, ऐसे कितने गलत गलत काम किए मैंने, मैंने सारी अखलाकी हदें फलांग दी इसके लिए। आदमी शर्मिंदा होता है, तो दुश्मनी में अगर आदमी हदें पार कर जाए, उसका सर, निगाहें, इज्जत उसकी झुक जाती है। दुश्मनी में भी आदमी अपने कैरेक्टर को आला रखना चाहिए। अच्छे इंसान के भी दुश्मन होते हैं, लेकिन अच्छा इंसान दुश्मनी निभाने में अच्छा रास्ता अख्तियार करता है। सब दोस्त होते ऐसा नहीं है, दुश्मन भी होते आदमी के, लेकिन दुश्मन के साथ भी आदमी को कैसा सुलूक करना चाहिए, आला सुलूक करना चाहिए, इंसाफ का दामन छोड़ना नहीं चाहिए, अखलाक की हदें फैलांगना नहीं चाहिए, जुल्म ज्यादती नहीं करना चाहिए, ऐसी साजिशें नहीं करना चाहिए जो अखलाक से गिरी हुई हो। तो ये तिर्मिजी की रिवायत है जिसमें आपने फरमाया कि अपने मबगूज से बुग्ज करने में थोड़ा हल्कापन इख्तियार कर, हल्कापन का मतलब ज्यादा सख्ती मत कर, नरमी कर। आसा अन यकून हबीबक यौमम्मा, हो सकता है कोई दिन ऐसा भी आए कि वो तेरा महबूब बन जाए, लेकिन जब तेरा दोस्त बनेगा तो दराड़ बाकी रहेगी, जब भी हाथ मिलाएगा याद आएगा इसने मेरे साथ ऐसा किया था जब दुश्मन था तब। तो ऐसा ना हो कि आपका कोई दुश्मन दोस्त बने तो आपको उससे निगाह मिलाना मुश्किल हो जाए। दुश्मनी के वक्त में ऐसी दुश्मनी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, घूम फिर के लोग यहां मिलते वापस, कहीं ना कहीं से रिश्ता जुड़ता है, कहीं ना कहीं से एक दिन ऐसा आता है कि दोनों एक जगह जमा होते हैं, एक बेंच पे दोनों को बैठना पड़ता है। तो उस वक्त में आदमी खुद अपनी निगाह में गिरना नहीं चाहिए, ऐसी दुश्मनी आदमी को निभाना चाहिए। कभी लोग ऐसे होते हैं रिश्तेदारों में, मसलन ऑफिस में, पड़ोस में, कि वो बहुत बदकिरदार होते हैं, आप अच्छे हैं लेकिन लोग कभी बुरे होते हैं, और वो आदमी आपके साथ ऐसी सी हरकत करता है जो आप नहीं करते हो, ये भी आदमी के लिए बड़ा फितना हो जाता है। इसमें कभी आदमी मायूस हो जाता है, कभी आदमी अल्लाह से नाउमीद हो जाता है, कभी दीन के एतबार से फिर नए नुस्खे सोचने लगता है, दीनी नुस्खे छोड़ के, तकवा की राह छोड़ के कुछ और करने की फिक्र करने लगता है। अल्लाह ने फरमाया, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ। किसी का कोई दुश्मन है और बहुत बुरा है, वो किसी से डरता नहीं है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? अल्लाह ने फरमाया, कि अगर वाकई तुम सब्र करो, सब्र करो का मतलब वो करो जो शरीयत बता रहा है, कंट्रोल में रहो, और वह तत्तकू और तकवा पर कायम रहो, तकवा परहेजगारी शरीयत की हदों को फलांगो नहीं, वह इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनकी चालें तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। दुश्मन की चालें तभी नुकसान पहुंचाती हैं जब आपका सब्र या आपका तकवा उसकी खिड़की खुल जाती है, उसमें छेद और उसमें सुराख पैदा हो जाता है। आपके सब्र की कश्ती, आपके तकवा की नाव, जब उसमें सुराख हो जाता है तो मुसीबत का पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि अपने मुखालिफिन के सिलसिले में सब्र और तकवा का खास ख्याल रखे। वो अगर गिरा हुआ अमल कर रहा है तो आपके लिए जरूरी नहीं है ना, अगर वो कीचड़ में लतपत हो रहा है तो आपके लिए भी जरूरी है कि उसकी बराबरी के लिए आप कंपीट करें उसे, इसमें भी नहीं। आपको अपने मयार से चलना चाहिए। कोई आदमी घुटनों के बल चल रहा है तो आप भी जरूरी नहीं कि उसकी दुश्मनी निभाने में घुटनों के बल चलें, आप अपने पांव पे चलें जैसे इंसान चलता है, आप उसकी तरह गिरे नहीं। तो ये दुश्मनी भी आदमी को बिगाड़ती है। बाज औकात लोग किसी की दुश्मनी निभाने में अपने दुश्मन बन जाते हैं, मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, मैं तो उसका ऐसा करके रहूंगा, है कि नहीं? कई केसेस आपने इसे देखे होंगे, कोई गम नहीं मैं बर्बाद हुआ चलूंगा लेकिन उसको बर्बाद करके रहूंगा। ऐसे अकलमंद भी जमीन पर दोनों पांव से चलते हैं। आप बताइए, दुश्मन ने इसका नुकसान किया, अब इतना उसको दिल को लग गया कि अपना नुकसान और चलेगा लेकिन उसका नुकसान, तो बाज़ औक़ात दूसरे के नुकसान में सुकून मिलता है इंसान को। जहालत है, जहालत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग दुश्मनी में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं और जुल्म और बहुत सारी बदअखलाकी पर आ जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम अदल इंसाफ छोड़ दो। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा, तुम अदल करो, इंसाफ पर कायम रहो, क्योंकि ये तकवा से करीब तर चीज है। इंसाफ छोड़ना नहीं चाहिए। दुश्मन है तो ना इंसाफी चलती है, नहीं, दोस्त के साथ भी इंसाफ और दुश्मन के साथ भी इंसाफ। आदमी का कैरेक्टर दुश्मनी में निखर के सामने आता है, या तो निखर जाता है या तो बिखर जाता है। दुश्मनी में या तो आदमी बिल्कुल आला रोशन हो जाता है या फिर एकदम बदनुमा हो जाता है, उसकी असलियत सामने आ जाती है। लिहाजा मुखालफत, दुश्मनी, इख्तलाफात, इसमें आदमी को चाहिए कि वह अपने किरदार को न खोए। कभी आपस के इख्तलाफात में मामला बिगड़ जाता है, एक ही मकसद को लेकर चलने वालों में भी इख्तलाफ कभी पैदा होता है। कभी इल्मी मसले पर इख्तलाफ हुआ, चोट लगी, इसने कोई बात बताई, हदीस बताई, उसने कहा ज़ईफ है, इसको बहुत गुस्सा आया, मैंने हदीस बताया वो ज़ईफ कैसा हुई, अब वो उसकी टोह में लग जाता है, अब ये जो भी बोलेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, तो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करने वाला ये बन जाता है। ऐसा भी होता है। कभी आपस की किसी को लगता है कि ये इसको इज्जत मिलती है मुझको नहीं मिलती है, फिर क्या करता है, ये उसको जलील करने के लिए कोशिशें करता है, हर मर्तबा उसकी गलती सामने रखता है, हर मर्तबा लोगों के बीच में उसकी गीबत करता है ताकि वो जलील हो। होता वो जलील नहीं है, कौन जलील होता है, क्योंकि लोग इतने भोले नहीं होते हैं, लोग देखते हैं इसका क्या मकसद है, क्यों कर रहा है ऐसा, बार बार उसकी बुराई क्यों करता है, ये बुरा है। लेकिन आंख पर जब पट्टी बन जाती है हसद की, तासुब की, बुग़्ज़ अदावत की, तो आदमी अपना नुकसान भी नहीं देख पाता है। तो आठवीं चीज जो हमने देखी वो ये कि आपसी इख्तलाफात, आपसी दुश्मनियां, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान, फितना और आजमाइश होती है। इसमें आदमी अक्सर औकात हक के रास्ते से फिसल जाता है, बहक जाता है। इसमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसका उसूल क्या है, सोल्यूशन क्या है, अदल इंसाफ और तकवा और सब्र, तकवा, सब्र और अदल इंसाफ और अखलाक के दायरे में बाकी रहना। नंबर नौ, शैतान का फितना, वो भी खुला हुआ, छूट उसको है दुनिया में, दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, हम उसको दिखाई देते हैं। ये भी शैतान का वजूद दुनिया में, ये भी एक बहुत बड़ा फितना इंसान के लिए है, बहकने का रास्ता है और सारी गुमराहियों का सर चश्मा जिसको आप कहें, जहां से सारी गुमराहियां शुरू होती हैं, कौन है? अब अवस्तक वरकाना मिनल काफिरीन, सबसे पहले अल्लाह का हुक्म नहीं मानने वाला, अल्लाह का हुक्म जानकर भी इनकार करने वाला है। तो जिसका जिंदगी का मकसद ही है कि जैसे खुद नाफरमान बना है और बर्बाद हुआ है, दूसरों को भी नाफरमान करके क्या करे, बर्बाद करते हैं। तो नौवां फितना शैतान का फितना है कि जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है और इंसान को बहकाता है, दो तरह से, दो चीजों में। एक शैतान का फितना दो तरह का है, एक शुबहात का फितना, दो शहवात का फितना। शुबहात शहवात क्या मतलब है? शुबहात, आदमी हदीस पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, दीन की बात सुन रहा है, अब शैतान दिल में डालेगा अल्लाह है कि नहीं। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान तुम में से किसी के पास आता है, पूछता है वो किसने पैदा किया, तो अल्लाह ने पैदा किया। दिल में ख्याल आता है, शैतान दिख रहा नहीं उसको, उसको लग रहा मैं सोच रहा हूं, दिल में ख्याल आया, पहाड़ किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, आसमान अल्लाह ने पैदा किया, ये सारे समंदर अल्लाह ने पैदा किए, जमीन अल्लाह ने, अल्लाह को फिर किसने पैदा किया? आदमी हा ना, तो आदमी उसके पीछे, जब सबको किसी ने पैदा किया है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? तो बाज औकात शैतान दिल में इस तरह की बातें डालता है। कभी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ रहा है, क्या वाकई अल्लाह के रसूल रसूल थे कि नहीं थे? शैतान दिल में वसवसे डालता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब भी शैतान वसवसे डाले, कहे आमनतु बिल्लाही व रसूलही, मैं अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाया। बस हम मानते, क्योंकि वो कोई इल्मी बात तो है नहीं, वो शक है सिर्फ, कि इल्मी बात का जवाब कुछ दिया जाए, भाई कोई दलील लाया तो आप भी तोड़ में दलील पेश करें, नहीं, झटक दो उसको, मैं मानता हूं अल्लाह को रसूल को, बस खत्म, सुनना ही नहीं मैं मुझको तेरी बात, तो इस लायक है कि तेरी बात मैं सुनू, नहीं। तो एक आदमी को ये फितना जिंदगी में पेश आता है, बहुत सारे लोग किसी को बताते भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि मौलवी साहब देखिए ऐसा ऐसा दिन में ख्याल आ रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल ऐसे ख्याल दिल में आते हैं कि जल के कोयला होना पसंद है लेकिन जबान से बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे ख्याल दिल में आते हैं। आपने फरमाया ऐसा होता है, ऐसा होता है, कहा हां, आपने कहा यही तो ईमान है, यही तो ईमान है कि तुम्हारे दिल में वो ख्याल आता है और दिल उसको इतना नापसंद करता है कि जबान से बोलने को भी पसंद नहीं करता है, तो इसको तो ईमान कहते हैं कि आपको पसंद नहीं है वो चीज जो आपके दिल में बात शैतान डाल रहा है, वो पसंद नहीं है। अगर राजी होता तो कुफर होता ना, राजी किधर है? और चोर किसके पीछे लगता? ऐसे आदमी के पीछे लगता है जिसके पास थैली में कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है, बस एक जो है लुंगी पहना हुआ है और शाद ओढ़ा हुआ है और जा रहा, चोर लगेगा उसके कुछ तो मिलेगा, इसके पास जाता उसके पास नहीं, उसके पास इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी चादर में क्या है, कुछ नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक आदमी निकला ब्रीफ केस और देख रहा है इधर उधर, बगल में दबाए होता, इसके पास कुछ है, इतना छुपा के जा रहा है, इसमें यूएस डॉलर्स हैं, इसके अंदर कुछ तो सोना चांदी इसमें है, इसके पीछे लगना चाहिए। जिसके पास कुछ होता है चोर उसी के पीछे लगता है। शैतान किसके पीछे लगेगा? उसी के पीछे लगेगा जिसके पास ईमान है। इसलिए आपने फरमाया तुमको ऐसा होता है, आपने कहा हाँ, आपने फरमाया यही तो ईमान है, वा सरीहुल ईमान, यही तो वाजे तौर पर ईमान है, ये तो असली ईमान है कि एक आदमी को कुफर की बातों से बयान करने की भी जरूरत ना हो, इतना सख्त लगे कि मैं कोयला हो जाऊंगा जल के, लेकिन मैं जबान से इतनी भयानक बात नहीं बयान करूंगा। ईमान है, उससे नफरत ईमान है, कुफर से नफरत क्या है ईमान। तो उनको नफरत थी उससे। तो शैतान दिल में शुभहात डालता है, कभी कभी आदमी के दिल में डालेगा। हम लोग हक पे है कि नहीं? सारी दलीलें देखा, सारी आयतें देखा, हदीस देखा, सब देखा, आप सब ठंडा होने के बाद फिर वापस हक पे है कि नहीं हम लोग? तो शैतान दिल में क्या करता है, बार बार डालता है, कहीं गलत तो नहीं हम लोग, कहीं वो तो हक पे नहीं है। जरा सा करामत किसी की देखी, अरे लगता वो सही है, करामत हो रही वहां पे। तो बहुत सारे लोग इस तरह से, कभी भीड़ देखे किसी की, कभी किसी के अजायबात देखे, कुछ ना कुछ देखे, शैतान दिल में हक के बारे में शक पैदा करता है, हक के बारे में शुभहात पैदा करता है, तो डाउट्स क्रिएट करता है। दो शहवात, एक है शुभहात, दूसरे है शहवात। शहवात क्या है? दुनिया की ललचाने वाली चीजें, कभी निगाह की हिफाजत के सिलसिले में जिना तक ले जाएगा, कभी जाती फायदे के लिए झूठ बोलने लगाएगा, कभी हराम चीज के जरिए से, अब फलां चीज चाहिए खरीदना है पैसे नहीं है, चोरी, खयानत, गबन, गसब, इसकी तरफ ले जाएगा। कि एक आदमी को दुनिया की जीनत सामने रखता है, फिर उसके हासिल करने के लिए रॉन्ग कट बताता है और गुमराह कर देता है। लज्जतों की तलब सामने रखकर आदमी को हराम तरीके से उसको पूरा करना सिखाता है। ये शहवतें हैं जो आदमी के अंदर हैं, उनकी तकमील के लिए गैर शरी रास्ता उसको बताता है। तो शहवात और शुभहात, ये दोनों फितने शैतान के हैं। अल्लाह ने फरमाया, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश्शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नत। ए आदम के औलाद, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, ए इंसानों, ला यफ्तिनन्नकुम अश्शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नत, कहीं शैतान तुमको उस तरह से धोखे में न डाल दे जैसा तुम्हारे मां बाप को जन्नत में से निकलवाने के लिए किया था। क्या किया उसने? ये पेड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ इसमें से फल, तुम फरिश्ता बन जाओगे, तुम बादशाह बन जाओगे। वो तो पहले मना था, अब नहीं, बहुत टाइम हो गया तुमको, खाओ अभी, भुला दिया, वो गफलत में डाल दिया। कसम खा के कहा, मैं जन्नत में कोई गलत बात बोलूंगा तुमको, खाओ, गलत बात थोड़ी बोल रहा हूं तुमको, मैं क्यों तुमको, तुम्हारा मैं भला चाहने वाला हूं, मैं क्यों तुम्हारा नुकसान करूंगा, क्या मेरा फायदा उसमें। कसमें खा खा के, यकीन दिला दिला के उसने उनको क्या कर दिया, धोखा दे दिया। उनको क्या मालूम झूठ भी बोला जाता है, तो पहले इंसान थे, कभी झूठ सुना ही नहीं, पहला झूठ शैतान का सामने आ रहा है, धोखा खा गए, खा लिया फल। अल्लाह ने क्या फरमाया, यंज़ु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। शैतान ने जब फल खिला दिया उनको उस पेड़ का, तो क्या हुआ, उन पर जो लिबास अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ था वो लिबास उतर गया, एक दूसरे की छुपाने की, पोशीदा रखने की जगह वाजे हो गई, नुमाया हो गई एक दूसरे के लिए। तो शैतान ने जैसे तुम्हारे मां बाप को जन्नत में धोखा दिया, कहीं वैसा तुमको दुनिया में धोखा ना दे। वो क्या करता है, मना चीज को अच्छी बना के जाहिर करता है, बुराई को भलाई बना के दिखाता है। उनको भी वैसा किया, तुमको दुनिया में भी वैसा ही करेगा। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, वो और उसका कबीला तुमको वहां से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते, तुमको दिखाई नहीं देता है लेकिन तुम उसको दिखाई देते हो, वो तुमको देखता है कैसा धोखा देना चाहिए, बराबर कहां से आए तो ये फिसलेगा, उसको मालूम है तुम्हारी कमजोरियां, वो जानता है तुम्हारी कमजोरियां, वो जानता है। लिहाजा शैतान भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फितना है। शुबहात के इजाले के लिए क्या करना चाहिए, दलायल और इल्म और यकीन। आदमी के पास दलीलें हो, उसके पास इल्म हो, उसके पास यकीन हो, इससे वो शुभहात से लड़ सकता है। और शहवात के लिए क्या होना चाहिए? तकवा, सब्र, अल्लाह का डर, आखिरत की फिक्र। ये जब आदमी के पास हो तो जो शहवतें सामने रखेगा आदमी कहेगा नहीं, मुझको नहीं चाहिए, अल्लाह ने मना किया है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे औरत पड़ गई, है तलक, इधर तो आ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नहीं, मुआद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए मुझको तुझसे। तो देखिए, यानी कोई रुकावट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक औरत खुद अपने आप को पेश कर रही है और जवानी की उम्र है, खूबसूरत इंसान है। आप बताइए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुआज़ अल्लाह, नहीं, अल्लाह मुझको बचाए, अल्लाह की पनाह। सलफ ने कहा कि ये जुमला अगर आदमी ऐसे वक्त में बोले तो महफूज हो जाएगा, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? दो ही लफ्ज हैं, मुआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए मुझको। क्योंकि आदमी खुद बच सकता है? नहीं, पांव फिसल सकता। तो एक नबी ने भी क्या कहा? अंबिया ऐसे अहवाल में अपने ऊपर एतमाद नहीं करते हैं, तकवा में भी अल्लाह की तरफ इत्मीनान और यकीन उनका होता है। हमारा तकवा भी हमारा अपना नहीं है, अल्लाह की तौफीक से है। तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह मुझको बचाए तुझसे। तो एक आदमी के लिए अल्लाह की तरफ रुजू, तकवा, ये चीजें होना चाहिए। तो ये शैतान के फितने से बचने के लिए। नंबर 10 आखिरी, ये सिर्फ 10 ही नहीं है, बहुत हैं, लेकिन 10 मिसाल के तौर पर हैं, ये बड़े बड़े हैं, वरना और भी बोलेंगे बस नहीं, और क्या, कहां से फितना है बोल नहीं सकते आपको। 10वीं चीज जो बहुत बड़ा फितना है, वो आदमी का अपना नफ्स है जो उसके साथ है। और शैतान अगर ना भी हो तब भी इंसान के गुमराह होने का मौका होता है। आप बताइए, इबलीस जिसने सज्दा करने से इनकार किया, उसको कौन से शैतान ने भड़काया था? वो खुद भटका। क्यों? अबा वस्तकबरा, घमंड, घमंड उसके अंदर आ गया, उसने अल्लाह की बात को इनकार कर दिया, अपनी अकल से फैसला किया, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी अकल चलाई और घमंड में आ गया। तो उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं था, वो अपने ऐब की वजह से गुमराह हुआ। तो एक आदमी को अगर शैतान न भी भड़काए तब भी उसके गुमराह होने का मौका बाकी रहता है। कब? जब वो नफ्स के धोखे में आ जाए। और नफ्स आदमी को क्या करता है? नफ्स आदमी को बुराइयों में मुब्तला करने की कोशिश करता है। अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स इंसान को बुराई ही की ताकीद करता रहता है, नफ्स इंसान को बुराई ही का हुक्म देता है। लिहाजा आदमी का नफ्स उससे खैर से हटा, क्योंकि खैर में मुजाहदा होता है, वो लज्जतों की तरफ इंसान को ले जाता है, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसमें बहुत तकलीफ है, नमाज कौन वजू करे, कौन फज्र के लिए उठे, कौन यूं करे, नहीं, रोजा, अरे भूख, हज कौन छोड़ के जाएगा इतना खर्चा, जकात, अरे अपना पैसा। तो आदमी का नफ्स जो है उसको लज्जत और राहत की तरफ ले जाता है। और ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो कोताही और हुदूद का फलांगना इसके असबाब में से है। हुक्मों में कोताही क्यों होती है? राहत की तलब, राहत चाहिए, मुजाहदा नहीं करना है, और लज्जतों की तलब हदें पार करने की तरफ ले जाती है। तो तकसीर और गुलू, इफरात और तफरीत, इन दोनों की वजह राहत तलबी और लज्जत तलबी, ये दो चीजें हैं। तो शैतान और नफ्स इनके इसकी बुनियाद है। नफ्स के अंदर तलब है, शैतान इस तलब को इस्तेमाल करते हुए नफ्स को बताता है, देख सता इसको जरा बता, तो नफ्स अंदर से मचलना शुरू होता है। फिर आदमी वो करता है जो नहीं करना चाहिए, मालूम होता है शराब पीना गलत है, ड्रग्स गलत है, जीना गलत है, निगाह की गलत इस्तेमाल करना गलत है, सब मालूम होता है, झूठ बोलना गलत है, चोरी गलत है, बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं, लेकिन फिर भी करता है, क्योंकि अंदर कंट्रोल नहीं होता है, चाहता है, दिल करता है, ये नफ्स होता है। क्योंकि नफ्स की वजह से शैतान को मौका मिलता है। بہت بڑا فتنہ آدمی کے لیے ہے, گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ. ابن النجار نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے جہاد کرے. سب سے بڑا افضل جہاد کیا ہے؟ آدمی اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے جہاد کرے, کیونکہ یہ ہر وقت دشمن ساتھ میں ہے, اس سے ہر وقت لڑنا ضروری ہے. وہ دشمن جو اسلامی فوج جس سے جا کے لڑتی ہے وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے, کئی سالوں میں ایک آدھ بار جنگ ہوگی, لیکن یہ ڈیلی ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ افضل جہاد ہے. افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ. تو آدمی کو چاہیے کہ نفس سے مجاہدہ کرے, لڑے اس سے. جو بھی نفس بولے ماننا کا مطلب یہ ہے کہ سواری کا غلام. آپ کا نفس جو ہے آپ کا مالک ہے, جو آپ کو بولے آپ کریں گے, آپ غلام ہیں اس کے. نہیں, آدمی میں غیرت ہونا چاہیے کہ میں اپنی نفس کی نہیں مانوں گا, میں نفس کو اپنی بات منواؤں گا. یہ نہیں کہ آدمی گاڑی چھوڑ دے اور جیسی گاڑی جاری جانے دے, سٹیرنگ ہاتھ میں رکھیں, گاڑی کا سٹیرنگ خود پکڑ کے چلانا چاہیے کہ جہاں دیکھیں گاڑی جہاں جاتی ہے جانے دیں گے. کر سکتا ہے آدمی؟ گھوڑے کو چھوڑ دیا آپ نے, جہاں جائے وہ جائے, اونٹ جہاں جائے جائے. نہیں, لگام ہے اس کی, اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, اس کو نقشے کے تابع رکھنا چاہیے, راستے پر باقی رکھنا چاہیے, اس کی لگام چھوڑنا نہیں چاہیے. تو نفس کی لگام ہاتھ میں رکھیں, اس کی خواہشات جو جائز ہیں پوری کریں, لیکن جیسے وہ ناجائز کی طرف جانے لگے لگام نہیں. اس لیے کہ دنیا میں اگر حرام لذتیں تو نے لی, جنت کی لذتیں اس سے محروم ہو جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے اللہ کا خوف بھی ضروری ہے. ایک تو تربیت نفس کی, دوسرے اللہ کا خوف. اللہ نے فرمایا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے, قیامت کے دن کے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو جو آدمی نمبر ایک, دیکھیں تین چیزیں ہیں, پہلا دوسرا تیسرا. نمبر ایک, جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا, قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے زندگی کے بارے میں, کیا کیا کیوں کیا, اب جواب دینا ہے اللہ کے سامنے, حساب ہونے والا ہے. نمبر ایک, اس کا ڈر ہے اس کو. دو, تو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اس نے, بری خواہشات پوری نہیں کی, جائز خواہشات صرف پوری کی. تین, جنت میں جائے گا. تو جنت میں جانا ہے تو بری خواہشات سے بچنا پڑے گا, بری خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرنا پڑے گا. اللہ کا ڈر آئے گا, قیامت کی فکر آئے گی, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. دنیا میں بھی ہوتا ہے, ڈاکٹر بتا دے اگر کسی کو, آپ کا 10 دن کا کورس ہے, یہ بالکل کھانا نہیں, آپ نے گوشت بالکل نہیں, کڈنی کا پرابلم ہوگا, یہ پرابلم ہوگا, کچھ بھی ہوگا, آدمی کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے, ولیمے میں گیا ہے لیکن بولتا کچھ خالی چاول دو اور صرف ڈال دو مجھ کو, گوشت نہیں. ارے آپ تو لڑکے لیتے تھے. ٹھیک ہے, وہ میرے اور دن تھے, ابھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے. ڈاکٹر نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. پڑوس میں بچہ پاس ہوا, کسی کو بیٹا ہوا, کسی کو بیٹی ہوئی, مٹھائی کا ڈبا لو. نہیں, کیوں؟ آپ تو بولے تھے پیڑے کہاں ہیں, جلیبی کہاں ہیں, اور پرانی لڈو کہاں ہیں, آپ تو بولے تھے نا. لیکن ابھی ڈاکٹر کے پاس کل ہی گیا تھا, بولا بالکل میٹھا کھاؤ مت, تم کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, شوگر ہے. شوگر ہے کہ شوگر ہے؟ شوگر ہے, شوگر شوگر. ہاں اچھا, شوگر ہے کیا؟ ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے میں کھا لیتا. کتنا بچتا ہے آدمی؟ بچتا نا. جب آدمی کو نقصان معلوم ہو تو آدمی کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر نقصان کا یقین کمزور ہو تو بچنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو سارا معاملہ آ کے کہاں اٹکتا ہے؟ یقین. آخرت کا یقین اگر کمزور ہو تو تقوی مشکل, آخرت کا یقین اگر مضبوط ہو تقوی آسان. تو ان سارے فتنوں میں بچنے کا بنیادی جو دو چیزیں ہیں جو زندگی میں ہونا چاہیے، ایک علم، اور علم وہ جو ایمان اور یقین کے ساتھ ہو، اور دوسرے تقویٰ، پرہیزگاری۔ یہ دو چیزیں جس آدمی کے پاس ہیں وہ آدمی کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی صفات میں دو چیزیں بیان کی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم کا مقام ہے، آخرت میں خوف و غم ان کے لیے نہیں۔ کون ہے یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے رہے، ان کی زندگی پرہیزگاری والی تھی، ان کے دلوں میں ایمان و یقین تھا۔ تو ایمان و یقین اور عملی تقویٰ، یہ دو چیزیں اگر زندگی میں ہوں آدمی دنیا میں تمام فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے اور دنیا میں تمام فتنوں سے بچ کر دنیا سے نکل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔